ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट लाइफ दी मोस्ट गाई हुई है, तो जैसे गॉडली स्टूडेंट लाइफ दी मोस्ट है, उसी प्रकार से गॉडली स्टूडेंट लाइफ के चार सब्जेक्ट, फोर सब्जेक्ट, चार विषय, उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। चारों ही सब्जेक्ट्स का अपने अपने स्तर पर बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये हमारे जीवन को, परिवार को, समाज को, देश को, दुनिया को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। चाहे ज्ञान का सब्जेक्ट है, चाहे याद का सब्जेक्ट है, धारणा का सब्जेक्ट है, या सेवा का सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं आपको चारों ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेने हैं, और चारों ही सब्जेक्ट एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने विशेष दो विषय, याद और सेवा पर अटेंशन खिंचवाया कि निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी बनो। आज 28 जून 2020 है और मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 फरवरी 1986। मुरली का टाइटल है निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी बनो। बाबा की मुरली दो भागों में विभाजित है। पहले मैन मुरली है और उस मैन मुरली से लगभग 13 पॉइंट निकाले हैं, जिसके माध्यम से हम मुरली को रिवाइज करेंगे। तो उसमें से पहली पॉइंट है गंगा सागर का मेला। भक्ति मार्ग में कहा जाता है और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार, क्योंकि गंगा सागर के मेले का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य आत्माएं जो मोक्ष की कामना रखती हैं, जो मुक्ति की कामना रखती हैं, तो संसार में ऐसी मान्यता है, धारणा है कि गंगा सागर का मेला, मेले पर जाने के बाद मनुष्य को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। एक पौराणिक कथा है, राजा सगर जिनके 60,000 पुत्र थे, उन्होंने विश्व विजयी बनने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ रचा और उन्होंने अपने अश्वों को विश्व भ्रमण करने के लिए छोड़ा। और उस समय की यह धारणा थी कि वो अश्व जहां जहां जिस जिस राज्य से गुजरेंगे, वो राज्य या उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे या फिर उनसे युद्ध करेंगे। तो राजा सगर ने उन अश्वों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को उनके साथ भेजा और वो अश्व कई राज्यों से होते हुए विश्व भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक दिन वो अश्व वहां से गायब हो जाते हैं। तो काफी छानबीन करने के बाद, खोजबीन करने के बाद, वो अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिलते हैं और कपिल मुनि अपने आश्रम में उस समय तपस्या में लीन थे, साधनारत थे। तो जब सगर के पुत्र उस आश्रम में पहुंचते हैं और अपने घोड़ों को देखते हैं, तो तो उनको बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध में, उस आवेश में उन्होंने उस तपस्वी कपिल मुनि को बहुत सारे अपशब्द कहे जिससे उनकी तपस्या भंग हुई और उन्होंने क्रोध में आकर के सागर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया। साथ साथ उन्होंने अपनी दृष्टि से उनको भस्मीभूत कर दिया। तो हम सभी जानते हैं कि एक योगी की दृष्टि में कितनी बड़ी शक्ति है, उनके योग में कितनी बड़ी पावर होती है। तो सागर के 60,000 पुत्र जब भस्मीभूत हो जाते हैं, उसके बाद कुछ समय के पश्चात सागर के पौत्र राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ख्याल चलता है। तो वो कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि उनकी मुक्ति का कोई मार्ग प्रशस्त करें। तो कपिल मुनि ने उनको कहा कि यदि आप इस धरती पर गंगा को ला सकते हैं और गंगा के स्पर्श से इनको मुक्ति मिल सकती है, तो बाद में कथा बहुत बड़ी है कि राजा भगीरथ ने तपस्या की, गंगा को प्रसन्न किया, गंगा को इस धरती पर आने के लिए बाध्य किया और गंगा बाद में इस धरती पर आई और सागर के 60,000 पुत्रों को उस भस्मीभूत अवस्था से मुक्त किया, उनको मोक्ष मिला। तो भक्ति मार्ग की ऐसी मान्यता है कि गंगा सागर के मेले पर जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा सागर अर्थात जहां गंगा नदी और सागर का मिलन होता है, जो भारत में पश्चिमी बंगाल में 24 परगना जिले में स्थान है, वहां हर वर्ष गंगा सागर का मेला लगता है और देश से लाखों श्रद्धालु उस मेले में जाते हैं। तो बाबा ने उस गंगा सागर के मेले का जिक्र किया। तो मुरली के पहले पॉइंट है गंगा सागर का मेला। तो बाबा कहते हैं कि आज ज्ञान सागर बाप अपने ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। जो ज्ञान गंगाएं भिन्न भिन्न स्थानों से होते हुए संसार की आत्माओं को, संसार को पावन करते हुए ज्ञान सागर के पास, ज्ञान सागर से मिलन मनाने के लिए पहुंची हुई है। ज्ञान सागर बाप उन ज्ञान गंगाओं को देख देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये गंगा सागर का मेला है जहां ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं आपस में मिलन मुलाकात कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। मुरली की दूसरी पॉइंट है ज्ञान गंगाओं की विशेषताएं। जो ज्ञान गंगाएं संसार को पावन कर रहे हैं, संसार की आत्माओं को पावन कर रही हैं, उनकी अपनी बहुत सारी खूबियां हैं, विशेषताएं। बाबा ने उन ज्ञान गंगाओं की कई विशेषताएं बताई, विशेषकर 6 विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है दृढ़ निश्चय और नशा। ज्ञान गंगाओं को यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य, संसार की आत्माओं को बदलने का कार्य, संसार की आत्माओं को पावन करना, संसार को पावन करना, यह कार्य संपन्न होना ही है। और उसी दृढ़ निश्चय और नशे से इस विश्व परिवर्तन के कार्य में तीव्र गति से अपना कार्य कर रहे हैं। तो पहली विशेषता है दृढ़ निश्चय और विश्वास। दूसरी विशेषता है उमंग। ज्ञान गंगाओं में बहुत बड़ा उमंग है, इस संसार को पावन बनाना ही है, संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाना ही है, और उस उमंग उत्साह के साथ वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए उमंग उत्साह का होना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा कि सृष्टि परिवर्तन का कार्य, विश्व को और विश्व की आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य, जो सबसे बड़ा कार्य है, इस कार्य को करने के लिए जिस उमंग उत्साह की जरूरत होती है, वो उमंग उत्साह इन ज्ञान गंगाओं में भरपूर है। तीसरी विशेषता है बाप समान की विशेषता। ज्ञान गंगाएं जो अपना कार्य कर रही हैं, वो ज्ञान गंगाएं बाप समान की विशेषता वाली हैं। जैसे हम भगवान की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, महिमा गाते हैं कि भगवान महादानी है, बरदानी है, विश्व कल्याणकारी है, रहम दिल है। भगवान की बहुत सारी विशेषताओं का हम चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान गंगाओं में भी वो विशेषताएं हैं, अर्थात बाप समान की विशेषता वाली हैं। हर एक ज्ञान गंगा महादानी, बरदानी, विश्व कल्याणकारी है, रहम दिल है। चौथी विशेषता है रहम। संसार की आत्माओं पर उनको रहम आता है कि संसार की आत्माएं जो दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, वर्तमान समय भस्मीभूत अवस्था में हैं, उन आत्माओं का कल्याण हो। वो आत्माएं भी भगवान को पहचाने और भगवान से अपना अधिकार प्राप्त करें, तो उनके अंदर रहम की विशेषता भी है। पांचवी विशेषता है स्नेह। हर एक ज्ञान गंगा के अंदर संसार के सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह की भावना है। संसार में जो भी आत्माएं हैं, चाहे किसी भी धर्म में हैं, धर्म को बिलोंग करने वाली हैं, चाहे किसी भी देश के निवासी हैं, किसी भी भाषा को जानने वाली हैं, संसार के सर्व आत्माओं के प्रति उनके दिल में, उनके मन में स्नेह का भाव है कि संसार की सभी आत्माएं मेरे अपने भाई बहने हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं। तो संसार की आत्माओं का कल्याण हो, वो ज्ञान गंगाओं में ये विशेषता भरी हुई है, और उस विशेषता के अनुसार सभी आत्माओं को स्नेह दे करके ज्ञान सागर के पास लाते हैं। छठवीं विशेषता है निमित्त भाव। तो बाबा ने कहा कि जो ज्ञान गंगाओं को बाप से खजाना प्राप्त हुआ है, चाहे ज्ञान है, चाहे शांति है, चाहे शक्ति है, चाहे खुशी है, या अन्य और जो भी खजाने हैं, तो बाबा ने कहा कि ज्ञान गंगाएं उन खजानों को देने के लिए निमित्त बनी हुई है। तो ज्ञान गंगाओं में निमित्त बनने की विशेषता है, उस निमित्त बनने की विशेषता के माध्यम से निमित्त बनकर के संसार की आत्माओं को ज्ञान की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, खुशी की किरणें संसार की आत्माओं को दे रहे हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि ज्ञान गंगाएं संसार की आत्माओं के कल्याण के लिए कैसे कैसे और कहां कहां से सेवाएं करते हुए वर्तमान समय आकर के ज्ञान सागर से मिलन मना रही हैं। तो ये मुरली की दूसरी पॉइंट थी, ज्ञान गंगाओं की विशेषता। तीसरी पॉइंट है सेवा का फाउंडेशन। बाबा ने कहा कि 50 वर्षों की सेवा का फाउंडेशन अच्छा डाला है, चाहे देश में चाहे विदेश में सेवा स्थान अच्छे स्थापित किए हैं, सेवा के साधन भी एकत्रित किए हैं, साथ साथ सेवा करने वाले सेवा साथियों का संगठन भी अच्छा तैयार किया हुआ है। तो बाबा खुश हैं कि ज्ञान गंगाओं ने 50 वर्षों की सेवा के परिणाम स्वरूप ये सेवा का फाउंडेशन अच्छा डाला हुआ है, और उसके अनुसार आपस में संगठन भी अच्छा है, सेवा के स्थान भी अच्छे बनाए हुए हैं, और सेवाएं भी खूब कर रहे हैं। चौथी पॉइंट है स्व उन्नति। और सेवा की विधि, स्वास्थ्य थे, स्वोन्नति और सेवा की विधि, समर्पण भाव। तो बाबा ने कहा कि अभी सेवा स्थान भी बढ़ाए हुए हैं, सेवा के साधन भी इकट्ठे किए हुए हैं, साथ साथ स्वोन्नति के प्रोग्राम भी बनाते रहते हैं। लेकिन जैसे सेवा के आदि में या स्थापना के आदि में जो भी यज्ञ में समर्पित हुए हैं उनके अंदर एक श्रेष्ठ भावना थी, समर्पण भाव, बाप के प्रति कुर्बान जाना, बाप के प्रति समर्पण भाव, सब कुछ बाप के हवाले कर देना, जो कुछ उनके पास था, तन मन धन समय, उन्होंने सब कुछ बाप के हवाले किया। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि स्वोन्नति और सेवा की वृद्धि के लिए आपके पास जो कुछ भी है वो सब बाप वाले कर दो, बाप के आगे समर्पित कर दो। तो इससे आपको सेवा में भी वृद्धि होगी, साथ साथ स्वयं की स्थिति उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये मुरली की चौथी पॉइंट थी। पांचवी पॉइंट है यज्ञ स्थापना और सेवा के आरंभ की विशेषता। बाबा ने यज्ञ स्थापना और सेवा के आरंभ के समय जो विशेषता थी उसको देखा और वर्णन किया। इस दोनों समय की विशेषता थी, ये थी कि सभी को अनुभव होता था। जैसे यज्ञ स्थापना के समय ब्रह्मा बाबा को सभी साधारण रूप में न देख करके श्री कृष्ण के रूप में देखते थे और बाबा के प्रति साकार, बाबा के प्रति हरेक के मन में ये भावना थी कि ये श्री कृष्ण, एक श्रेष्ठ भावना थी। तो बाबा ने कहा जैसे यज्ञ स्थापना के समय ये विशेषता रही कि साकार बाबा को साधारण रूप में न देख करके श्री कृष्ण के रूप में देखते थे, इसी प्रकार से जब सेवा का आरंभ हुआ और सेवा के आरंभ के समय जो बहनें थी, वर्तमान समय की दादियां, जब वो सेवा के फील्ड में बाहर गई तो जहां जहां सेवा में गई वहां लोगों ने उनको देवियों के रूप में देखा, शक्तियों के रूप में देखा, विशेष व्यक्तियों के रूप में देखा। तो बाबा ने कहा कि जहां जहां सेवा के फील्ड में गए, सेवा के स्थानों पर गए, सेवा करने गए, वहां सभी ने उनको विशेष देवियों के रूप में देखा, देवियों के रूप में अनुभव किया, शक्तियों के रूप में अनुभव किया, विशेष व्यक्तियों के रूप में अनुभव किया, क्योंकि उनके जीवन की, उनके चेहरे की आभा, चेहरे का एक ओरा होता है, उसका सभी ने अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं जैसे सेवा के आरंभ के समय में या स्थापना के आरंभ के समय में लोगों ने झलक और फलक का अनुभव किया, उसी प्रकार से अभी आपको उनको फिर से अभी अंत समय में सभी को वही झलक वही फलक अनुभव करानी है। तो ये पांचवी पॉइंट थे। छठवी पॉइंट है प्रत्यक्षता का नगाड़ा। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की यह दिली इच्छा है कि संसार में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजे, संसार की आत्माएं सब भगवान को पहचाने, भगवान के साथ अपने संबंध स्थापित करें और भगवान से अपना अधिकार प्राप्त करें। संसार में चारों ओर सभी के दिल में, सभी के मन में भगवान का नाम गूंजता हुआ सुनाई दे। तो बाबा ने कहा कि जैसे आदि काल में ये विशेषता रही अनुभव करने की, तो उसी प्रकार से अभी अंत में भी वही विशेषता अनुभव करानी है। जब आत्माएं आपके प्रैक्टिकल जीवन से, प्रैक्टिकल व्यवहार से अनुभव करेंगे कि ये विशेष आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं, ये ईश्वरीय संतान है, तो बाबा ने कहा कि उस अनुभव के आधार से संसार में ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, वो झलक वो फलक संसार की आत्माओं को अभी आपके जीवन से, अभी आपके प्रैक्टिकल व्यवहार से अनुभव होने चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अभी आप जहां भी जो भी सेवा पर जाते हैं तो संसार की आत्माओं को आपके जीवन से वो झलक वो फलक जो आदि काल में दिखाई देते थे वो अभी अंत में भी दिखाई देने चाहिए, तभी संसार में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अगले पॉइंट है, खजानों को सेवा में लगाने से स्वोन्नति के गिफ्ट की प्राप्ति। तो बाबा ने कहा कि जो भी आपके पास ईश्वरीय खजाने हैं उन खजानों को सेवा में लगाओ, अपने छोटे छोटे बातों में समय को व्यर्थ नहीं करो। तो बाबा ने कहा कि अभी आपके पास जो खजाने हैं समय और संकल्प, साथ साथ ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, तो ब्राह्मण आत्माओं के पास जो भी खजाने हैं बाबा कहते हैं उन खजानों को अभी सेवा में लगाओ। इन खजानों को जितना आप सेवा में लगाएंगे उतना ही आपको स्व उन्नति की गिफ्ट प्राप्त होगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अभी 2 घंटे के 4 घंटे का सेवाधारी नहीं, 2 घंटा 4 घंटा सेवा के ऐसा नहीं, अभी आपको निरंतर सेवाधारी बनने हैं, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो। तो विश्व कल्याणकारी बन जो आपके पास खजाने हैं उन खजानों को अभी सेवा में लगाने हैं, कोई भी खजाना वेस्ट नहीं करने है, ना स्वयं के तन के प्रति, ना मन में बहुत सारी व्यर्थ बातें चलती रहती हैं, ना उन व्यर्थ संकल्पों में, ना साधनों के प्रति, ना संबंधों के प्रति, कोई भी खजानों को वेस्ट नहीं करने, उन खजानों को सेवा में अभी निरंतर लगाना है। जैसे भक्ति मार्ग में एक नियम है अजपा जाप, तो बाबा ने कहा कि ऐसे आपकी निरंतर सेवा भी चलती रहे। अगले 7वें पॉइंट है गोल्डन जुबली। तो बाबा ने कहा कि जैसे स्टेज पर बैठने वाले और सामने बैठे हुए जो ऑडियंस हैं, उन दोनों ने यह अनुभव किया कि ये देवियां हैं, शक्तियां हैं, तो जैसे स्टेज पर बैठने वालों ने भी अनुभव किया अपने आप को कि मैं देवी हूं, शक्ति हूं, और सामने देखने वालों ने भी ये अनुभव किया ये साक्षात देवियां हैं, शक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा कि इसी अनुभव को अपने सेवा स्थानों पर, अपने कार्य क्षेत्र पर प्रैक्टिकल में स्वयं भी अनुभव करते रहना और दूसरों को भी अनुभव कराते रहना, इसके लिए चलते फिरते ये अभ्यास करना कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। तो बाबा पूछते हैं कि सभी ने गोल्डन जुबली मनाई, सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या किसी किसी ने, सभी की गोल्डन जुबली थी या किसी किसी की, तो सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या किसी ने सिल्वर जुबली मनाई या किसी ने तांबे की जुबली मनाई। तो बाबा कहते हैं गोल्डन जुबली मनाना अर्थात अपनी स्थिति को गोल्डन बनाना, गोल्डन जुबली मनाना अर्थात अपने संकल्प, अपनी वाणी, अपना संबंध संपर्क और कर्म को गोल्डन बनाना अर्थात श्रेष्ठ बनाना। तो बाबा ने यह कहा कि गोल्डन जुबली मनाना अर्थात अपने जीवन को गोल्डन समान श्रेष्ठ बनाना, श्रेष्ठ बनाना, इसे कहेंगे गोल्डन जुबली मनाना। अगले पॉइंट है बेहद के संस्कारों से हद के संस्कारों की समाप्ति। बेहद के संस्कारों से हद के संस्कारों की समाप्ति। तो बाबा ने कहा कि अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। उसके लिए बाबा कहते कि विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इन श्रेष्ठ संस्कारों के आगे आज के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं लगाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। तो विजयीपन के संस्कार के आगे जो हद के संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, जो मायावी संस्कार हैं, वो संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अगले पॉइंट है समस्या और समाधान। बाबा ने कहा कि जब संकल्प और सेवा से, संकल्प और सेकंड दोनों को सेवा में समर्पित कर देंगे, जब आप संकल्प और सेकंड को सेवा में इतना समर्पित कर देंगे कि आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगी, तो बाबा ने कहा कि फिर माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं रहेगी। समस्याएं, जो भी समस्याएं फिर जीवन में आती हैं, वो समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। तो जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे तन की व्याधि के रूप में, मन में व्यर्थ संकल्पों के रूप में, संबंधों में टकराव मनमुटाव के रूप में, या प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, तो बाबा ने कहा उन समस्याओं को समाधान के रूप में परिवर्तन करो। कैसे करेंगे? जब अपने हर समय को, हर सेकंड को और हर संकल्प को सेवा में बिजी करेंगे। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे शुरू में देखा शुरू 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 के समय में सभी ने देखा कि जो सेवा में आत्माएं थी, जो बहने सेवा में थी, उनको सभी ने देवी के रूप में, शक्ति के रूप में अनुभव किया। तो उस समय जो आत्माएं उनके पास आती थी सेवा स्थानों पर, वो अनेक भावनाओं को लेकर के आती थी। किसी की हो सकता है दृष्टि वृत्ति ठीक ना हो, लेकिन उनके संबंध संपर्क में आते ही उनकी भावनाएं बदल जाती थी। तो बाबा ने कहा कि पति दृष्टि वाले उनके पास आते थे लेकिन जिज्ञासु बनकर जाते थे। तो इसे कहते हैं समस्या को समाधान के रूप में परिवर्तन करना। तो बाबा ने कहा कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं में अपना समय, अपना संकल्प वेस्ट न करके आप ऐसे समर्थ बन जाओ कि समस्याएं परिवर्तन हो जाएं, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएं। अगले पॉइंट है अविनाशी लंगर से स्व का ग्रहण समाप्त। हर एक ब्राह्मण आत्मा के जीवन में कई प्रकार की कमी कमजोरियां हैं जो ग्रहण के रूप में है। जैसे जब किसी पर ग्रहण लगता है तो व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है, जीवन में हर समय असफलता का अनुभव करता है। इसी प्रकार से इस ब्राह्मण जीवन में हर एक आत्मा में कोई ना कोई ऐसे संस्कार हैं, ऐसी आदतें हैं, कोई ऐसे कारण हैं जिनके वशीभूत आत्मा अपने आप को अनुभव करती है। तो बाबा ने कहा कि उस ग्रहण से बचने के लिए अविनाशी लंगर लगाओ। किस चीज का लंगर लगाएंगे? जो भगवान ने खजाने दिए हुए हैं, ज्ञान, गोल, शक्तियां। तो बाबा ने कहा चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संकल्पों से दो, ये संसार की आत्माओं को कंटिन्यू आपको देना है। उस देने में लेना समाया हुआ है। यह दुनिया में यह धारणा है कि जिस चीज की कमी होती है वो दूसरों को देते हैं, उससे हम उससे वो चीज की वृद्धि होती रहती है। साथ साथ ये भी कहा जाता है देह दान तो छूटे ग्रहण। तो जो जीवन में ग्रहण लगा हुआ है, तो बाबा ने कहा कि आप ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का संसार के आत्माओं को दान देंगे, इसका लंगर लगाएंगे, तो उससे आपका ग्रहण उतर जाएगा। अगली बार भी पॉइंट है महासंस्कार से कमजोर संस्कारों की समाप्ति। महासंस्कार कौन कौन से होंगे?
महान बनने वाले,
आप जो बाप के संस्कार है, जो आत्मा के अनादि अभिनय संस्कार है, वो महान संस्कार है। तो बाबा ने रिजल्ट में देखा कि बहुत करके हरेक के जीवन में, हरेक के पुरुषार्थ में, हरेक के जीवन में कोई ना कोई एक संस्कार होता है, और वो एक संस्कार समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से उनके सामने आता रहता है, जो बार बार उनको हार की अनुभूति कराता रहता है। तो बाबा ने कहा कि अपने महान संस्कारों को इमर्ज करो, तो जो आपका संस्कार है वो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने उसके लिए कई एग्जाम्पल दिए, जैसे कि किसी में बुद्धि के अपमान का संस्कार होता है, दूसरा किसी में घृणा भाव का संस्कार होता है, किसी में दिल शिकस्त होने का संस्कार होता है, और किसी में अपने को और ही ज्यादा होशियार समझने का संस्कार होता है। तो बाबा ने कहा कि हरेक में संस्कार कोई ना कोई होता है, और वो संस्कार जीवन में बार बार उसको हार खिलाता रहता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जो आपका जो बाप के संस्कार है महान संस्कार, या जो आपके अनादि संस्कार हैं, आदि संस्कार हैं, उन संस्कारों को इमर्ज करो, उन संस्कारों को जीवन में लाओ, तो बाकी जो कमजोर संस्कार हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है, सेवा में बिजी रहो तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं जो अपना लंगर डाले हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं, हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकलते नहीं है। तो बाबा ने कहा उसके लिए सेवा में बिजी हो जाओ, क्योंकि ये सेवा ऐसी है जिस सेवा को करने से हमारे जो मन की स्थिति है वो हमेशा शक्तिशाली रहती है, बुद्धि में हमेशा ज्ञान की नई नई पॉइंट्स इमर्ज होती रहती है, साथ साथ संसार की आत्माओं से दुआएं मिलती है, भगवान के भी मदद मिलती है। तो ये सब बातें जीवन में जब प्रैक्टिकल में होती रहती है, तो जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनसे मुक्ति चाहते हैं, तो बाबा ने कहा उन समस्याओं का लंगर स्वतः ही उठ जाएगा। इसके लिए सेवा में हमेशा अपने आप को बिजी रखो, हमेशा कोई ना कोई सेवा में अपने आप को बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा सेवा में, चाहे कर्मणा सेवा में। बाबा ने कहा चाहे वृत्ति से दो, चाहे संकल्पों से दो, चाहे वाणी से दो, लेकिन आपको हर समय देते रहना है, तो इससे जो कमजोरियां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो ये मुरली की कुछ बातें थी, जो मुख्य मुरली थी उससे ली हुई ये 12-13 पॉइंट हैं, इनको आप हम सबने रिवाइज किया, जिसमें पहली मुरली पहली पॉइंट थी गंगा सागर का मेला, दूसरे पॉइंट्स थे ज्ञान गंगाओं की विशेषता, तीसरी पॉइंट सेवा का फाउंडेशन, चौथी पॉइंट स्वोन्नति और सेवा की विधि समर्पण भाव, पांचवी पॉइंट सेवा के आदि और स्थापना के आदि समय की विशेषता, छठी पॉइंट प्रत्यक्षता का नगाड़ा कैसे बजेगा, सातवें पॉइंट गोल्डन जुबली अर्थात क्या, फिर अगले पॉइंट वेद के संस्कारों से अर्थ के संस्कारों की समाप्ति, आठवें पॉइंट या नाइन्थवें पॉइंट समस्या और समाधान, अगले पॉइंट थे अविनाशी लंगर लगाओ तो स्व का ग्रहण उतर जाएगा, और बारहवीं पॉइंट थे बेहद के संस्कारों से महासंस्कारों से हद के संस्कारों की समाप्ति, और लास्ट पॉइंट थे सेवा में बिजी रहो तो स्व का ग्रहण उतर जाएगा। तो ये मुरली के कुछ पॉइंट्स थे जो अभी रिवाइज की, अभी आगे हमारे विठल भाई जी आगे के मुरली को मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुरली की डेट थी 1886। मुरली का सार, निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। तो जो मुरली का फर्स्ट पार्ट था अरविंद भाई ने तो आपको बता दिया। अभी हम जो सेकंड पार्ट है, दादी के साथ मुलाकात, यानी आदि रत्नों के साथ, गोल्डन जुबली में आदि रत्न थे, उन आदि रत्नों के साथ बाप दादा की जो मुलाकात हुई उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसकी हमने इसे 7 पॉइंट निकाली है, तो 7 बातें पर अब हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात है गोल्डन जुबली के बारे में, बाबा ने आज के आदि रत्न थे उनको बताया कि गोल्डन जुबली मनाई, सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, यही सोच रहे हो ना। लेकिन गोल्डन जुबली का बाबा ने अर्थ बताया कि गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, गोल्डन जुबली अर्थात संपूर्ण बनने की जुबली, गोल्डन जुबली अर्थात अपनी स्थिति को गोल्डन बनाने की जुबली। तो बाबा का भावार्थ यही था कि 50 वर्ष की सेवा की तो उसी में हमारे अंदर कितना परिवर्तन हुआ, हमारी स्थिति कितनी गोल्डन बनी और हम संपूर्णता के पास कहां तक पहुंचे, ये पहली बात बाबा ने कही। दूसरी कि जादे रत्न थे उनको कहा सभी खुश होना, कि खुशी का कारण यही है क्योंकि आपने आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजाया और अंत में साथ रहेंगे। तो आदि रहे, आदि उनके साथ रहे और अंत में उनको साथी बनाएंगे, तो ये वरदान प्राप्त हुआ है, तो इस खुशी में आप खुश हो। बाद में स्नेह के बारे में बाबा ने बताया कि जो आदि रतन है, जब शुरुआत में यज्ञ में आए तो उस समय स्नेह के कारण ही आए, क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाप का उन्होंने स्नेह देखा, क्योंकि उस समय ज्ञान का उतना विस्तार नहीं हुआ था। तो बाप ने जो स्नेह दिया वो स्नेह के कारण उनका जन्म हुआ, क्योंकि मनोहर दादी का हमने एक अनुभव सुना, उस वो कह रहे थे कि बाबा ने इतना स्नेह दिया कि हम शिव बाबा का हमें उतना बुद्धि नहीं जाती थी, हम ब्रह्मा बाबा को भगवान समझते थे, बोली इतना बाबा ने स्नेह दिया। तो शिव बाबा कह रहे हैं आदि रत्नों की कि आपका जन्म जो स्नेह से हुआ, तो जो जन्म स्नेह से हुआ तो वही आप दूसरे को पालना दो, जो भी आपके सामने आएंगे उन्हें स्नेह से पालना करो, उसको स्नेह दो। और दूसरी बात हो गई वाली। तीसरी बात चित्र और चरित्र, उसके बारे में बाबा शिव बाबा ने बताया कि आप सभी आदि रत्न यानी बाप का चित्र हो, आपके द्वारे बाप का चित्र दिखाई देता है और आपके चलन से चरित्र दिखाई देता है। तो चित्र और चरित्र ये एक है, अलग नहीं है, क्योंकि कोई पूछे कि बाप का चरित्र क्या है तो जब आपकी चलन देखेंगे तो आपके चलन से वो चित्र दिखाई देगा। तो ये बाबा ने बताई। उसके ले जो बाबा के और बच्चों का हर कर्म है वो अलग नहीं समान है, उसके लिए जैसे गोपी गोप का, हाँ, का बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे गोप गोप गोपी वल्लभ और गोपी गोपिका है, तो उसका वो भक्ति मार्ग में भी यादगार है कि जैसा कृष्ण एक ही था और गोपियां अनेक थी, लेकिन हर एक गोपी के पास कृष्ण आकर रासलीला करते थे। तो ये हमारा यादगार है, तो जो भी कार्य कर रहे बाबा तो बच्चों के साथ कर रही है। अभी चौथा पॉइंट है ब्रह्म बाबा के जो त्यागी थे, कितनी त्याग की भावना थी, उस पर श्री बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा यानी त्याग की भावना भी नंबर वन गए, क्योंकि उनके सामने जो भी बच्चा आता था तो पहले बच्चे को आगे रखते थे, वो पहले मैं नहीं, मैं ये संकल्प भी उनके अंदर नहीं आता था, तो सदैव बच्चे को आगे रखते थे और उसी कारण ब्रह्मा बाप नंबर वन में चली गई। तो ये बाबा ने बताया
आगे रखना है, आगे होगा, आगे रखना है, आगे होना है।
हाँ, आगे रखना है, आगे होना है। हर एक को आगे रखना यानी आगे बढ़ना है। तो उसमें शिव बाबा ने और बोला कि उसने संबंधों का त्याग किया, वैभव का त्याग किया, ये कोई बड़ा त्याग नहीं हुआ। बोले देखो इतना त्याग किया उन्हें सब संबंधों को, जो भी उसके पारिवारिक परिवार के सदस्य थे उनका आत्मा के रूप में देखा उन्होंने, और उनमें उन्हें नष्ट हुआ हो गया वैभव भी। उनके पास इतनी जो भी चल अचल धन प्रॉपर्टी थी वो सब उन्हें यज्ञ में स्वाह कर दिया, और वो उसका भी त्याग किया। लेकिन इन त्याग से भी श्रेष्ठ त्याग है यानी हरे को आगे रखा उन्होंने और दूसरे को आगे रखा। इसी श्रेष्ठ त्याग के कारण मैपन से नष्ट हो गया, मैपन उसका मिट गया। अगला पॉइंट है पालना, यानी दादियों को जो डायरेक्ट बाप की पालना मिली, तो पालना मिलने के कारण इतनी शक्तिशाली बन गए वो कि उसने जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचा दिया दादियों ने। क्योंकि उस समय समाज में यही मान्यता थी कि स्त्रियों को घर के बाहर नहीं निकलती थी स्त्रियां, क्योंकि घर घर और परिवार भी संभालना इतने तक सीमित थी, पर्दे के अंदर भी रहती थी। लेकिन जब बाबा के बच्चे बने, बाबा का ज्ञान मिला उन्होंने, तो बाबा ने इतनी पालना दी उसके अंदर, इतनी शक्तिशाली बनी कि जन जन तक उन्हें बाबा का संदेश पहुंचा दिया। तो ये शक्ति भरी बाबा को, जो शक्ति आपके अंदर भरी जैसी पालना बाबा ने दी वैसी पालना भी आप सभी को देना है। उस पर मेरे को मनोरिंदा दादी का एक अनुभव याद आ रहा है कि जब दादी को सेवा के लिए भेजा था, देखो कैसे कैसे परिस्थिति में उन्होंने सेवा की, उस समय भी कितनी समस्या आई, यानी लौकिक परिवार से भी आई बाकी समाज से भी आई, लेकिन उस समस्या में भी उन्होंने बाबा का संदेश पहुंचाया। तो बाबा ने जब दिल्ली में भेजा था उनको, जो यमुना नदी के कंटे पर वो सेवा करते थे, जो यमुना नदी का घाट था उस घाट पर दिन भर बाकी भक्त लोगों की भीड़ होती थी, वहां पर वो स्नान करने के लिए आते थे। तो दादी उनको बाबा का संदेश देते थे, और बाद में रात के समय कोई रहती नहीं थी और सभी लोग चले जाते थे। मेरी एक दादी और एक बहन दोनों ही रहते थे, क्योंकि उतना अंधकार रहता था वहां पर, कोई रहती नहीं थी, अकेली दो दादियां रहती थी, तो एक सोती थी और एक जागती रहती थी। इस प्रकार वो रात निकालती थी। तो उसमें एक पहलवान आता था वो सवेरे सवेरे, जब वो देखता था ये दोनों बहने वहां पर बाबा की याद में मगन है, तो फिर उसको साक्षात्कार हुआ कि ये कोई देविया होंगी। तो हो सकता है देवी है, तो उसने अपने मन में संकल्प किया कि एक सही में देवी होंगी तो मैं इस कुश्ती को जीतूंगा। वो पहलवान था, कुश्ती खेलता था, और सही में क्या हुआ, उसका संकल्प पूरा हो गया, वो कुश्ती जीत गया। बाद में वो उसको लगा कि मैं कुश्ती जीत गया, वो इन देवियों के कारण नहीं जीता, इनको प्रसाद के रूप में कुछ मैं दूंगा भोजन वगैरह। तो उसने वो खीर का साहित्य ला, खीर बनाने का, कुछ चावल लाई, कुछ चीनी लाई, और दादी को देने के लिए गया कि ये ले लो और आप खीर बना लो। वो बोले हम क्यों खीर बनाए आपके, हम तो भोजन खाते नहीं, क्योंकि उस समय दादिया फूल फ्रूट भी खाते थे और उस समय कोई उनके पास साधन भी नहीं था भोजन बनाने का। तो बोले हम नहीं खाएंगे। तो नहीं, उसने बोला मैंने संकल्प किया था इस प्रकार का, वो मेरा संकल्प पूरा हो गया। बात दादी बोली हो हमके क्या पता आपको संकल्प। तो वो बोले हमारे पास कुछ चूल्हा वगैरह लकड़ा वगैरह नहीं, बोले दादी। फिर वो पहलवान था, उसने बोला हम सब प्रबंध करा देंगे। तो फिर उसने चूल्हा लकड़ा वगैरह दे दिया ला करके, और दादी ने फिर वो उस चूल्हे पर खीर बनाई। वो उन्होंने दो बहनों ने खाया और वो पहलवान को भी दे दिया। बाद में वो ज्ञान सुनने लगा और बाद में सच्चा बाबा का बच्चा बन गया, और बाद में और भी लोगों को उस जहाँ पर सत्संग दादिया करती थी यमुना के कंठे पर, तो बाकी लोग को लेके आता था और उनको भी दादी बाबा का संदेश सुनाते थे। बाद में एक अमीर माता रोज वहां पर स्नान करने के लिए आती थी, एक दिन वो भी सत्संग सुनने के लिए आई। तो उसकी उस दिल्ली में 20 मकान थे, तो उसने अपना एक मकान दादी को बोला कि एक मकान मैं आपको सत्संग के लिए दे देता हूँ। तो इस प्रकार देखो वो स्थान भी मिल गया। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा की छत्र छाया में वो रहती थी और उनको मदद भी मिल जाती थी। इस प्रकार
कि उनको पालना दी बाबा ने डायरेक्ट, वो पालना के कारण उनके अंदर शक्ति आई और उस शक्ति से जन जन तक परमात्मा का संदेश उनने पहुंचा दिए। अगला पॉइंट है विशेषता है कि बाबा शिव बाबा ने कहा है कि दादी में बहुत विशेषता है, क्योंकि विशेषता में कम नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा बाप के साथ उन्हें पाठ बजाया है, ये कोई कम विशेषता थोड़ी होगी। तो जो विशेषता है वो विशेषता काम में लगाओ, बोले अपने कार्य में लगाओ या उस विशेषता का दान करो। जो विशेषता बाबा की वो भी विशेषता बच चुकी है, तो विशेषता दान करने से महानता आ जाती, महान बन जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप का शिव बाबा ने मिसाल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने संगम पर जो भी उनकी विशेषता थी वो विशेषता कार्य में लगाई, उसके कारण कलयुग के अंत में उसका जीवन इतना महान बन गया। तो ये विशेषता, जैसा लौकिक दुनिया में देखो किसी के पास विशेषता रहती है और वो विशेषता जब कार्य में लगाते तो वो एक जन्म के लिए महान बन जाते। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हैं कि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थी, उसके अंदर अहिंसा की विशेषता थी और वो जन जन तक अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाते थे जनता को, और उसके आधार से, उस विशेषता के आधार से उन्होंने परतंत्र भारत को स्वतंत्रता दिलाई, तो उसके कारण उसकी इतनी महिमा होती, आज महान बन गए। लेकिन वो एक जन्म के लिए महानता मिली है, वो मान बनी है। लेकिन बाबा ने हम संगम पर जो भी अपनी विशेषता का दान करते हैं तो हमारे सारे कल्पों में हमारा जीवन महान बन जाता है, ये शिव बाबा ने बताया। और अगला पॉइंट है स्नेह और समाधान स्वरूप। तो शिव बाबा ने आदि रत्न को कहा है कि स्नेह के जिसमें सब पास है, सब पास मार्क लिया है, लेकिन समाधान स्वरूप की माला बनानी है। तो समाधान स्वरूप बाबा ने यथार्थ अर्थ बताया कि समाधान स्वरूप अर्थात संपूर्ण स्थिति, जैसे ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति थी, तो ब्रह्मा बाप के सामने कोई जो भी समस्या लेकर आते थे या कोई क्वेश्चन करने के लिए आते थे, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे तो अपने समस्या भूल जाते थे, तब उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि बाबा को बताने की, और उनको समाधान भी मिल जाता था, न समस्या बताते थे। इसका कारण क्या था? ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्थिति। तो बाप की संपूर्ण स्थिति के कारण समस्या का समाधान हो जाता था। इसलिए शिव बाबा कह रहे कि हर एक बच्चे में ये समाधान स्वरूप बन जाए तो माया क्या करेंगी, विदाई समारोह मना लेंगे, इसलिए और समाधान स्वरूप बन जाएंगे हर एक बच्चा। तो ये समाधान स्वरूप के बारे में, तो ये 7 पॉइंट पूरे हो गए, क्योंकि बाबा ने दादियों को, आदि रत्नों को जो बातें बताए था, इस पर बाबा ने दादियों को ही विशेषता और पालना की बताया। अभी हम थोड़ा वरदान पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि वरदान में बताया है कि मर जीवा जन्म, जो मर जीवा जन्म को श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए बाबा ने 2 बातें बताई, एक सदा परोपकारी बनो और दूसरी सदा पाल ब्रह्मचारी बनो। इन 2 बातों से हमारा मर जीवा जन्म श्रेष्ठ हो सकता है। तो मर जीवा जन्म यानी क्या, यानी इसी जन्म में हमारा दूसरा जन्म हो, इसी शरीर में हमारा दूसरा जन्म हो गया। तो मर जीवा जन्म यानी हम पहले साधारण मनुष्य थे, बाद में ब्रह्म मुख द्वारा हमारे ब्राह्मण बन गए हम। तो ब्राह्मण बनने के पहले हमारा जीवन किस प्रकार का था, कई भाई बहनों का ऐसा अनुभव है कि हमारा पहले वाला जीवन यानी कितना दुखी था, अशांत था, कितने टेंशन में थे, कई लोग तो डिप्रेशन में चले गए थे। एक भाई ने अपना ऐसा अनुभव सुनाया था कि बहुत में टेंशन में हो गया था, क्योंकि वो अपने पत्नी के साथ यानी ऐसा संशय रहता था पत्नी के प्रति, और उसके कारण बहुत टेंशन में था। तो उसने क्या किया, आत्महत्या करने का ट्राई किया। तो पहले उसने अपने पत्नी को मर्डर कर दिया, खत्म कर दिया, और बाद में खुद को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया और बाद में उसको जेल हो गई। कुछ दिन तक वो जेल में रहा और बाद में जेल में ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बाबा का संदेश मिला। तो देखो बाद में उसका जीवन इतना परिवर्तन हो गया कि एकदम वो सेवा करने लगा। और एक भाई का ऐसा होता था कि 24 घंटे शराब के नशे में रहता था, वो शराब पीता था, लेकिन देखो उसको जब बाबा का संदेश मिल गया तो उसने एक दिन में अपने शराब से मुक्त हो गया, और उसके द्वारा बहुत सारी सेवा हो रही है अभी। क्योंकि जो भी शराबी लोग है उससे प्रेरणा लेकर उसकी भी शराब छूट रही है। तो इस प्रकार पहले के जन्म कैसे थे, तो ये बाद में बाबा ज्ञान मिलने के बाद वो जीवन महान बन गया, श्रेष्ठ बन गया। तो बाबा वही बता रहे कि आप ब्राह्मण बने तो जीवन महान बन गया, लेकिन जो मर्जी और जन्म है अभी हमारा, तो उस जीवन को और भी श्रेष्ठ बनाना है, तो श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने दो बातें बताई। तो परोपकार करना है तो परोपकार बाबा ने उसमें दो प्रकार का परोपकार बताया। ये यानी विश्व के प्रति परोपकार और ब्राह्मण परिवार के प्रति परोपकार। हम विश्व के प्रति कैसा परोपकार करें, क्योंकि आज देखो विश्व की आत्मा कितनी अशांत दुखी है, जिनको भगवान का संदेश नहीं मिल रहा है, वो तड़प रहे भगवान के परिचय के लिए, वो बेचारे तीर्थ स्थान करे इधर उधर भट्टा करे लेकिन उसको भगवान का परिचय नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना, ऐसी आत्माओं को यानी मनसा द्वारा सका देना है कि उनको बाबा का संदेश मिल जाए, जो भटकने वाले आदमी उनको थकान दूर करनी है। और आज देखो ये लोग बीमारी कारण तड़प रहे, आज विश्व में ये कोरोना वायरस के कारण देखो लोग कितने भयभीत हो गए, सब पूरा विश्व डर रहा है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, सारे विश्व को सकार देना है कि वो भय से मुक्त हो जाए, वो बीमारी से मुक्त हो जाए। इस प्रकार हम विश्व के प्रति पॉजिटिव सकार दे करके उनका कल्याण कर सकते, उपकार कर सकते। दूसरी बात बाबा ने बताया कि ब्राह्मण परिवार के प्रति, जैसे ब्राह्मण परिवार है हमारा, तो उसके प्रति हमें कल्याण करना है, उसका उपकार करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो उस पर निश्चय रखना पड़ेगा, ये हमारे परिवार के हमारे भाई बहन है। जब अपना निश्चय हो जाएगा परिवार के प्रति, तो हम उसके प्रति शुभ भावना दे करके उसका भी कल्याण कर सकते हैं। ये दूसरा दो बातें होगी बाबा ने कि विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति। बाद में जो मर्जीवा जन्म की दूसरी पॉइंट है बाल ब्रह्मचारी, सदा बाल ब्रह्मचारी रहना। जैसे दुनिया के लोग है यानी ब्रह्मचर्य के लिए क्या करते हैं, शरीर को शुद्ध बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हैं, लेकिन बाबा ने हमें उससे आगे का बताया है कि हमें पवित्र जीवन जीने यानी मनसा वाचा कर्म एकदम पवित्र रहना है। दूसरी बात ब्रह्मचर्य के बारे में बाबा ने बताया कि जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म के आचरण पर चलने वाले, जैसे ब्रह्मा बाबा यानी कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया उन्होंने और अपने को संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया उन्होंने, तो ऐसा हमें भी ब्रह्मा को फॉलो करके अपना एक जीवन बनाना है। वैसे जैसे ब्रह्मा बाबा का संकल्प वाणी और कर्म शुद्ध थे, उसके मन में एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं आता था। जैसे वो स्लोगन में बता है कि यदि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प आ जाएंगे तो सारे खजाने क्या व्यर्थ हो जाएंगे। मानो हम किसी को सका दे रहे, किसी को खजाने का दान कर रहे मनसा में, और यदि हमारे मन में भी व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो वो खजाने क्या हो जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं, वो व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो खजाने भी व्यर्थ हो जाएंगे। तो हमें समर्थ संकल्प करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा का संकल्प समर्थ चलता था उसमें भी फॉलो करना है। जैसी वाणी है, ब्रह्मा बाबा की वाणी में इतना मिठास था, इतने जो भी थके भागे या दुनिया में दुखी आत्मा उनके सामने आ जाते थे, बाबा अपने वाणी से उनकी थकान दूर कर देते थे, उनको सुखी बनाते थे। हम तो वैसा भी हमें अपने वाणी को शुद्ध बनाना है। और कर्म भी, ब्रह्मा बाबा के कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि अपने व्यवहार से वो सभी को सुख देते थे, जो भी उनके संबंध संपर्क में आते वो खुशी से भरपूर हो जाते थे। तो ये वरदान की बात होगी। तो इस प्रकार बाबा ने बताया कि यदि हम अपने मर्जी और जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ये जो दो बात यदि हमने अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम बाबा के समीप रहेंगे और हमारा प्रारब्ध श्रेष्ठ हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।